ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोसी बाढ़ के दौरान लापता व्यक्तियों की खोज तथा बचाव कार्य जारी। आज 6 लोगों का किया गया उद्धार। भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का सरकार का निर्णय। भाद्र 23 गते जेंजी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत कृष्णभीर में वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए अध्ययन शुरू। और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क में निवेश करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने भाद्र 22 गते नेपाल भर के सरकारी कार्यालयों तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावासों और नियोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाकर राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी। इसी तरह भाद्र 23 गते जेंजी शहीद दिवस के अवसर पर देशभर सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। प्रवक्ता पोखरेल ने यह जानकारी दी। बैठक में भोटे कोसी बाढ़ के बाद खोज एवं बचाव कार्य में तैनात सुरक्षा कर्मियों तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और खाजा खर्च उपलब्ध कराने का निर्णय भी किया है। बचाव कार्य के दौरान घायल होने पर निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिवार को प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए राहत उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया गया है। बैठक में भोटे कोसी बाढ़ प्रभावित लोगों की जीवन रक्षा तथा तत्काल आपातकालीन खोज बचाव और राहत कार्यों के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को स्वीकार करने का निर्णय किया है। बाढ़ प्रभावित नागरिकों तथा व्यवसायों के तत्काल पुनरुत्थान के लिए राहत कर तथा महसूल में छूट सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय भी किया गया है। इसी तरह बाढ़ प्रभावित व्यक्ति उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय को तत्काल सुचारू करने के लिए एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना के तहत राहत कर तथा महसूल में छूट और अन्य सहूलियत एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक ने कुल 25,000 मैट्रिक टन चीनी एवं प्रतिशत सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति देने का निर्णय भी किया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव नारायण प्रसाद भट्ट को पदोन्नत कर कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थापन करने का निर्णय भी किया है। रसुआ की भोटे कोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण लापता लोगों की तलाश आज भी जारी है। इस क्रम में भोटे कोसी बाढ़ में लापता हुए 6 लोगों का नेपाली सेना ने उद्धार किया है। नेपाली सेना द्वारा जारी अपडेट के अनुसार लामटांग और चिलमे हाइड्रो कंपनियों के टनल में विदेशी नागरिकों समेत खोज एवं बचाव दल द्वारा तलाश जारी है। इसी क्रम में त्रिशूली 3A में नेपाली और चीनी तकनीकी विशेषज्ञों सहित 93 लोगों की संयुक्त खोज एवं बचाव टीम तथा त्रिशूली 3B में नेपाली सेना के 83 गैर सैन्य कर्मियों और आयोजन के प्रबंध निर्देशक सहित संयुक्त खोज एवं बचाव दल द्वारा तलाश जारी है। इसी बीच नेपाली सेना के प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने आज हाइड्रो कंपनियों के टनल तथा अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित निकायों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग के साथ उच्च मनोबल बनाए रखते हुए खोज एवं बचाव कार्य जारी रखने का निर्देश किया है। रसुआ की भोटे कोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1252 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार इनमें रसुआ में 127, नुआकोट के 177, धादिंग से 60, चितवन से 355, गोरखा से 69, तनहू से 38, नवलपरासी पूर्व से 218 और नवलपरासी पश्चिम से 190 शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा भारत में मिले 18 शव जिन्हें नवलपरासी पश्चिम को सौंपा गया है। इसी बीच बाढ़ में घायल हुए लोगों में से दो लोगों की आज उपचार के दौरान मौत हो गई है। इनमें एक का उपचार टीचिंग अस्पताल और दूसरे का राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूना संकलन सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब तक 201 महिलाओं, 327 पुरुषों और 369 अज्ञात शवों सहित कुल 897 शवों को सुरक्षित रूप से मिट्टी के नीचे दफन कर रखा गया है। नेपाल पुलिस ने पहचान नहीं हो पाए 1052 शवों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसी तरह बाढ़ के बाद अब तक 4798 लोग लापता है। नेपाल पुलिस के नेतृत्व में लापता लोगों की खोज तथा तलाश का कार्य जारी है। परराष्ट्र मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रसुआ की भोटेकोसी बाढ़ में 34 देशों के 590 विदेशी नागरिक लापता है। मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 300 विदेशी नागरिकों सहित अब तक 11993 लोगों का उद्धार किया गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पेश किए गए। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने नेपाल भारत के बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार संबंधी समझौता पेश किया। समझौते के तहत आगामी 10 वर्षों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता सदन में पेश किया। बैठक ने बाल श्रम निषेध तथा नियमित करने विधेयक 2083 को दफावार चर्चा के लिए संबंधित संसदीय समिति में भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। सांसदों ने रसुआ की सुरंग में फंसे लोगों के खोज एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी सरकार से मांग की है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 24 गते बुधवार दोपहर 1 बजे होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। रसुआ की भोटेकोसी बाढ़ के कारण चीन के केरुंग क्षेत्र में फंसे 114 नेपाली नागरिक आज तातोपानी नाका होते हुए नेपाल लौट आए। तातोपानी अध्यागमन कार्यालय के अनुसार चीन ने सुरक्षित रह रहे नेपाली नागरिकों को पासपोर्ट नंबर सहित आवश्यक विवरण के साथ नेपाली अधिकारियों को सौंपा है। लौटने वालों में अधिकांश सिंधुपाल्चोक, नुआकोट और रसुआ के नागरिक हैं। रसुआगढ़ी नाका और पासांग लामू राजमार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद ये लोग केरुंग में फंस गए थे। भोटेकोसी और त्रिशूली नदी में आज भी अचानक बाढ़ का उच्च जोखिम बना हुआ है। बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा की बाढ़विद सरस्वती बिष्ट के अनुसार भोटेकोसी के ऊपरी तटीय क्षेत्र में बारिश हो रही है और आगे भी बारिश होने की संभावना है। इससे रसुआ और नुआकोट से होकर बहने वाली भोटेकोसी, त्रिशूली तथा आसपास की छोटी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। महाशाखा ने नदी और नाले के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने उज्जवलो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष कुलमान घिसिंग ने मुलाकात की है। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज हुई मुलाकात में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे खोज बचाव और राहत कार्यों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के सचिवालय ने यह जानकारी दी। मुलाकात में प्रधानमंत्री शाह ने सुरंग में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा हर संभव संसाधन और जनशक्ति परिचालन करने की बात कही। इसी तरह प्रधानमंत्री शाह से नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के नेता वर्षमान पुन ने भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के सचिवालय के अनुसार मुलाकात में रसुआ बाढ़ और उसके बाद चल रहे खोज बचाव उपचार तथा राहत वितरण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे को पुनः सुचारू करने के विषय पर भी विचार विमर्श हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और दीर्घकालीन विकास बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, ऊर्जा की पहुंच, जलवायु अनुकूलन क्षमता, रोजगार तथा टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे क्षेत्रों में केवल किसी एक देश का प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर साझा योजना और निवेश आवश्यक है। विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने से विकास की गति बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और अधिक एकीकृत करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्षेत्रीय पहलों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र, विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग के माध्यम से दीर्घकालीन और जलवायु लचीली परियोजनाओं में निवेश जुटाने पर जोर दिया है। ऐसे क्षेत्रीय तंत्र का उद्देश्य निवेश में दोहराव को कम करना, संसाधन जुटाना और विभिन्न देशों की प्राथमिकताओं को एक साझा विकास ढांचे से जोड़ना है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोसी बाढ़ के दौरान लापता व्यक्तियों की खोज तथा बचाव कार्य जारी, आज 6 लोगों का किया गया उद्धार। भोटे कोसी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में भाद्र 22 गते राष्ट्रीय शोक मनाने का सरकार का निर्णय। भाद्र 23 गते जयंती दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत कृष्णभीर में वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए अध्ययन शुरू और दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क में निवेश करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।